ओम शांति। मधुबन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी फतेहपुर निवासी एवं उनके कनेक्शन के विशेष महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। देखो वाकई में आप सभी महान हैं जिनका कि कनेक्शन अभी बाप दादा के घर मधुबन से जुड़ा हुआ है और बाबा भी हम सभी को एक ऐसी श्रेष्ठ महान स्थिति में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है और हम सब देख रहे हैं कि समय बहुत ही तीव्र गति से जा रहा है और यदि हमें समय पर मंजिल पर पहुंचना है तो अपने पुरुषार्थ की गति को भी तीव्र बनाकर रखना होगा, तभी हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे, अन्यथा समय की दौड़ में पीछे रह जाएंगे और पश्चाताप करना पड़ सकता है। तो इसलिए पुरुषार्थ को समय के साथ साथ बनाकर रखना बहुत बहुत जरूरी है। वैसे तो आप सभी अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ करते ही होंगे, लेकिन हम कुछ एक बातें आज आप सभी को अपने अनुभव के आधार से बताएंगे और इस संबंध में जो कुछ अव्यक्त बाप दादा ने हमें वाणियों में इशारे दिए हैं वो सभी बातें आपके सामने रखेंगे। यदि हम उनको अपने जीवन की धारणा में लाकर चलें, स्वरूप बन जाएं, तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन कारण। देखो एक तरफ आप मान लो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य रख के आगे बढ़ने का संकल्प रखता है तो कईयों के सामने कोई न कोई विघन समस्या परिस्थिति आ जाती है और उसके कारण पुरुषार्थ का उमंग उत्साह ठंडा पड़ जाता है। तो पहले हम उन कारणों का निवारण कर दें तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। तो बाबा ने तीन मुख्य कारण बताए वाणियों में। पहला कारण बताया जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है वो है मैं और मेरापन। मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरे अंदर गुण विशेषता है, मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकता हूं, मुझे आगे रखा जाए और मैं ऐसा हूं वैसा हूं। तो कहीं भी यदि मैं शब्द आता है तो मैं वहां बाबा भी अलग हो जाता है। मैं पन का अभिमान अपमान कराता है, बाप दादा के दिल से दूर ले जाता है, पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बन जाता है। इसलिए मैं शब्द जहां भी आए तो वहां अपना श्रेष्ठ स्वमान ही याद आए। और देखो मेरा जिससे भी है ना चाहते भी बुद्धि उधर चली जाती है, है? मेरा मकान, दुकान, बिजनेस, बच्चे या मेरी कोई प्रिय चीज, आज की सबसे आजकल की ज्यादा प्रिय चीज क्या है लोगों की? मोबाइल। कुछ भी हो गया, ऊपर नीचे हो गया, गुम हो गया तो कितना संकल्प चलते हैं। इसलिए सभी मेरों को तेरे में बदल दो, बाबा सब कुछ तेरा। जब उसका है तो बुद्धि किधर जाएगी? फिर उसमें ही जाएगी। बाबा बैठा है, कुछ हो गया तो सब कुछ ठीक कर देगा। अगर इस निश्चय के साथ उसका समझ कर चलेंगे तो निश्चित रूप से वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो अभी भी आप सबसे पूछा जाए भाई सभी मैं मेरे पन से मुक्त हुए हैं तो सभी क्या कहेंगे? हैं भाई सब कुछ बाबा का ही है, वही चला रहा, वही करा रहा, ये कहेंगे ना है? लेकिन इसका कैसे पता चलेगा कि सब कुछ उसका है, वही चला रहा है, हम सिर्फ निमित्त बन के पाठ बजा रहे हैं और हम अभी भी हमारे अंदर मैं मेरापन है या उससे मुक्त हो चुके हैं? तो इसकी चेकिंग के लिए बाबा ने एक यंत्र दिया। संदेश में ये बात कही है अव्यक्त बाप दादा ने। तो बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे। उस चार्ट में बाबा ने क्या देखा कि बच्चे मोटे रूप के मैं मेरेपन से तो मुक्त हुए हैं लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। तो उसका पता कैसे चलेगा? तो उसकी चेकिंग के लिए बाबा ने एक तीन बातों का यंत्र दिया। बाबा ने कहा कि देह भान से न्यारे होकर, तो आप सब सुनते भी जाना और अपने आप को अभी चेक करते जाना साथ साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तक हमारे अंदर में मेरापन है या उससे मुक्त हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा कि देह बांध से न्यारे होकर, दूसरा साक्षी दृष्टा बनकर कि खेल नाटक चल रहा है, उसमें हम सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं, तो अपने पार्ट को भी दूसरों के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना। तीसरा, संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो, तो सारे ज्ञान का सार क्या है, बिंदु बन जाना, तो आत्म अभिमानी बन जाना। तो इन तीनों बातों को सामने रखते हुए अब चेक क्या करना है, ये यंत्र मिला और इस यंत्र के द्वारा क्या चेक करना है कि यदि अचानक आर्डर मिले छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बाबा ने कहा इसमें एवर रेडी हैं, हरेक अपने आप से पूछ ले हैं। अभी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यहां बैठे बैठे ही अभी बाबा की तरफ से इशारा मिले, एक बच्चे सब कुछ छोड़ के एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ, तो क्या हम एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं तो समझो एवर रेडी है, मैं मेरेपन से मुक्त हुए हैं। और यदि नहीं तो जिसमें भी मेरापन होगा बुद्धि उधर जाएगी, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा है? और पेपर तो एक सेकंड का ही होगा और बुद्धि उधर गई तो फेल। तो इस तरह से हम चेक कर लें कि हमने अपने आप को कितना मुक्त बनाया मैं मेरेपन से, और जिन्होंने अपने आप को मुक्त बनाया होगा वो एक सेकंड में बस तैयार एवर रेडी बनकर और उस पेपर को पार कर लेंगे। तो इस तरह से मैं मेरेपन से मुक्त बने। दूसरा बड़ा कारण जो तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है वो है एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कापी करना। वो ऐसे करते हैं, उनके अंदर ये कमी कमजोरी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए है। तो अब देखो ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, सबका पुरुषार्थ तो एक जैसा वैसे भी नहीं होना है, नंबर वारी होना है, तो कमी कमजोरियां तो रहेंगी जब तक वो आत्मा नहीं चाहे उन्हें खत्म करना है और उसी अनुसार आगे भविष्य में पद मिलना है। तो यहां सभी का एक सिलेक्शन हो रहा है, किसको क्या पद मिलना है, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उदाहरण आधार से उसको वो प्राप्ति होगी, पद मिलना है। तो एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कापी करना। तो जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है वो कभी एक दूसरे को ना देखें, वो अपने आप और बाबा को ही देखकर चले, तो पुरुषार्थ में ऐसी आत्मा आगे जा सकेंगी। दूसरा, हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कापी करना। आज जिनके पास भी जो साधन सुविधा है वो हरेक के अपने कर्मों के हिसाब किताब अनुसार पुरुषार्थ के फल रूप में उन्हें मिली है, प्राप्ति हुई है। भाई मेरा अपना पुरुषार्थ है, मेरा अपना पार्ट है, भाग्य है। अब मैं एक 40-50 साल वाले ज्ञान में चलने वाले व्यक्ति से अपनी तुलना करूं जो 5-10 साल से ज्ञान में चली हूं, भाई उनके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, उनके अच्छा बंगला है, उनको ये साधन सुविधा है, तो ये समझदारी नहीं होगी। जो मेरे पास साधन सुविधा है उसमें रहकर ही मैं अपना पार्ट बजाऊं, उसमें रहकर ही मैं अपने आप को संतुष्ट करके चलूं। तो जिनको तुलना करनी है तो साधन सुविधाओं में नहीं, तुलना करनी है तो पुरुषार्थ में कीजिए, स्थिति में कीजिए, गुण विशेषताओं में, महानताओं में कीजिए, और बाबा से कीजिए, दादियों से कीजिए, जिनका पुरुषार्थ तीव्र है उनसे कीजिए, तो आपका भी पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा ना। तो तीसरा कारण जो तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है वो है हद की इच्छाएं। हद की इच्छाएं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये प्राप्ति हो जाए, फलाना मेरे को सहयोग दे तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो, और मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो। अभी कि ये क्या हो गया, ऐसा हो तो मैं ऐसा करूं, इच्छाएं रख ली ना, ठीक है। इच्छा एक है इच्छा रखना, दूसरा है आवश्यकता। देखो जो आवश्यकता है वो तो जरूर मिलनी ही चाहिए, लेकिन आपके पास कोई चीज है फिर भी दूसरे को देखकर आपके मन में संकल्प आया कि नहीं ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। तो अब जो कुछ हम चाहें वो सब कुछ ही तो हमें नहीं मिल जाएगा, कई बार मिल भी जाता है कई बार नहीं मिलता, मिल गए तो खुश नहीं मिले तो परेशान। तो इस तरह से हम कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें तो पुरुषार्थ हमारा तीव्र गति का होगा। बाबा से कीजिए, दादियों से कीजिए, महान आत्माओं से कीजिए। तो इन तीन कारणों का हम निवारण करके चलें, और कुछ एक ऐसी बातें हैं उनको हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। ये बात बाबा ने संदेश में भी और वाणी में दोनों में कही अव्यक्त बाप दादा ने। तो बाबा ने कहा कि नॉलेज फुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है। हम सबको ज्ञान है, हम सब योग भी कर रहे हैं, नियम धारणाओं में भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कईयों का पुरुषार्थ तीव्र गति का नहीं हो पाता है। क्या कारण? जो अभी बताया, ज्ञान है, योग भी सब कर रहे हैं, लेकिन योग हमारा ज्वालामुखी बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का नहीं है, पावरफुल नहीं है। तो साधारण योग है तो क्या होता है कि साधारण योग से विकर्मों का विनाश नहीं होता है, साधारण योग से संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं और पुरुषार्थ की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो उसके लिए चाहिए पावरफुल बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का योग, उससे विकर्म विनाश होंगे, उससे संस्कारों का परिवर्तन होगा और पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। तो योग को पावरफुल बनाने के लिए क्या करें, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं तीन प्रैक्टिकल के अभ्यास बतला रहा हूं। ये तीन अभ्यास आप आज से ही करके रोजाना चलें, जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है, अपने योग को पावरफुल बनाना है, तो निश्चित रूप से आपका योग पावरफुल बन जाएगा। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि हमारी आंखें जो कुछ देखती हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनी, वैसे विचार बने, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाती है। तो इन आंखों से हम क्या देख रहे हैं, भगवान की क्या श्रीमत है वही देख रहे हैं। देखो, अव्यक्त बाप दादा जब आते थे तो सबको मुरली चलाने से पहले 15-20 मिनट पूरा पावरफुल आत्मिक दृष्टि देते थे, और जो आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा से दृष्टि लेते थे तो वो सहज ही प्यार के सागर में समा जाते थे। तो इसलिए दृष्टि, बाबा के ये भी महावाक्य हैं, तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, तुम्हारी दृष्टि से आत्माएं और प्रकृति पावन बन रही है। इतना बड़ा महत्व है हमारी दृष्टि का, और इसलिए बाबा ने नियम बनाए किसी से मिलो पहले आत्मिक दृष्टि दो। तो आत्मिक दृष्टि एक रूहानी करंट का काम करती है, शक्तियों का काम करती है, और उस आधार से बहुतों की मनोवृत्तियां सहज बदलती चली जाती हैं और उन्हें एक अलौकिक दिव्य अनुभूति होती है। तो इसलिए हम रोजाना ये प्रैक्टिस करें, मुझे कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। दूसरा अभ्यास, सारे दिन में, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, 5-10-15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। क्यों जरूरी है ये अभ्यास? क्योंकि ज्यादातर भाई बहनों के पुरुषार्थ में ये दो बातें, और भी हैं बातें, लेकिन ये दो बातें ज्यादातर विघ्न रूप बनकर सामने आती हैं। क्या? देह का भान और देह का अभिमान। तो इन दोनों को खत्म करने के लिए, देह भान को तोड़ने के लिए हम बार बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस करें। तो इससे हमारा, जैसे कि यह देह मेरी खत्म हो गई और केवल मैं आत्मा बची हूं, ऐसा अनुभव करो, आज नहीं तो कल ये सीन आप सबके सामने आएगा ही, और मैं आत्मा उड़ के जा रही हूं बाबा के पास वतन में। तो ऐसे बार बार इस शरीर से डिटैच न्यारे होने का या शरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो देह भान और देह अभिमान दोनों खत्म होते चले जाएंगे और अशरीरीपन की स्थिति सहज अनुभव हो जाएगी, सहज ही मन बुद्धि उसमें एकाग्र हो जाएगी। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं और ये सभी फरिश्ता बनने वाली देवी देवता बनने वाली महान आत्मा है, इस नजर से सबको देखें। तो इससे क्या होगा, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। तो जो हमें बनना है, संगम योगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो उस स्वरूप को हम अपने सामने निरंतर इमर्ज रूप में रख के चलेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, मुझे ये बनना है। तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी और दूसरों को भी जब हम उस रूप में देखेंगे तो किसी की कमी कमजोरी नजर ही नहीं आएगी, हर एक की गुण विशेषता महानता ही नजर आएंगी, वो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी। तो ये तीनों अभ्यास आप विधि पूर्वक कर लो सारे दिन की दिनचर्या में और फिर आप योग करने बैठो तो आप अनुभव करेंगे कि सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। तो इस तरह से योग को हम पावरफुल बनाएं और जहां योग हमारा पावरफुल है तो उससे ही विकर्म विनाश होंगे, संस्कार परिवर्तन होगा और योग ही वास्तव में सर्व समस्याओं का समाधान है। इसलिए आज की मुरली में भी देखो बाबा ने याद के ऊपर कितना जोर दिया है, प्रैक्टिस करो बार बार जो मैं बतला रहा था यही कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इससे ही पावन बनेंगे और विकर्म विनाश होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, सहज योगी बन जाएंगे। राज तिलक पाने का आधार बाबा का यही है। तो इसलिए इस पाठ में हम पक्का करें और जितना हमारा अच्छा कम से कम, यदि आप विघन परिस्थिति समस्याओं के प्रभाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो कम से कम एक दिन में हमारा 4 घंटे का योग का चार्ट अवश्य होना चाहिए सभी का, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। एक अनुभव, हमारी यहाँ पांडवन के आंगन में ही सेवा है, मुझे मधुबन में रहते हुए हो गए 38 साल और 43 साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए। फरीदाबाद हरियाणा से ज्ञान मिला, वहीं से समर्पित हुए। तो मेरे आंगन में सिक्योरिटी की सेवा है पांडवन के आंगन में दिन के समय, और रात्रि क्लास प्रोग्राम बनाने की भी सेवा मिली हुई है। तो आंगन में बैठा था तो एक सेवाधारी माता मेरे पास आई और कहने लगी, भाई जी, और बहुत जगह बाबा योग भट्टी कराने की सेवा में भेजता रहता है, विदेश में भी कई जगह जाना हुआ है। तो एक सेवाधारी, मैं कहीं जा ही रहा था उस दिन योग भट्टी कराने की सेवा में, तो सेवाधारी माता आई तो कहने लगी, भाई जी, मेरी ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। तो मैं उस दिन भी कहीं बाहर जा रहा था तो मैंने माताजी को बोला, माताजी, मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूं बाबा की सेवा में 5 दिन के लिए योग भट्टी कराने की सेवा में। तो मैंने कहा, आप 5 दिन ऐसा करिए, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माताजी योग करती रही 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो माताजी मिलने के लिए आई। तो पूछा, बोलो माताजी क्या समस्या है। तो माताजी कहती है, भाई साहब, मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएं कहां हैं, क्यों ज्यादा हैं? जहां हमारा योग बाबा से कम है अथवा नहीं है वहीं ज्यादा समस्याएं। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। और हमारा योग अच्छा है तो बस आपका उससे ही संस्कार परिवर्तन होंगे, विकर्मों का विनाश होता चला जाएगा और पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। दूसरी बात तीव्र पुरुषार्थ के लिए कि हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें। जो भी आपने जीवन में लक्ष्य रखा है, मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही है, अमृत वेले आंख खुलते उसे कम से कम 7 बार अपने मन में, अंतर मन में इमर्ज कर लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आपको सफलता मिलती जाएगी अनेक कार्यों में। 9 बार रिवाइज कर लो। और मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मुझे फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता बनते चले जाएंगे। और मैं मास्टर दुख हड़ता सुख करता हूं, तो अनेक बीमारी विकारों पर, बीमारियों, रोगों पर आपकी विजय होती चली जाएगी। तो जो हम बनना करना चाहते हैं उस विचार को अमृत के लिए उठते ही कम से कम 7 बार इमर्ज कर लो अपने मन में, उसका स्वरूप बन जाओ, तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। तो हम अपनी दृढ़ता को बनाए रखेंगे, मुझे ऐसा बनना है, ये करना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से वैसे बनते जाएंगे। तो देखो, अव्यक्त बाप दादा जब आते थे, मुरली चलाते थे, तो आप में से जो भी पुराने हैं देखा होगा उन्होंने कि मुरली चलाते चलाते कई बार बाबा ये बातों की हमारे से हाथ उठा के प्रतिज्ञा कराते थे, दृढ़ संकल्प कराते थे, और हम भगवान के आगे दो दो हाथ उठा के ऐसे प्रतिज्ञा कर देते कि हमेशा बन के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। मुरली सुनी, रात को भोजन किया, सो गए, दूसरे दिन मुरली सुनी, कर्म में लगे, दूसरे दिन शाम तक पूछो भाई कल बाबा से क्या प्रतिज्ञा की थी। तो क्या होता है, कईयों को तो बात ही भूल जाती है, कईयों को याद भी रहता है तो कहते हैं हाँ बन जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, वो गेम बदल जाती है। और कई कुछ कर भी पाते हैं तो प्रैक्टिकल थोड़े लोग ही थोड़े परसेंटेज में कर पाते हैं, ऐसा होता है ना। क्यों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कईयों का अच्छा भी है पुरुषार्थ, लेकिन काफी भाई बहनों से ऐसा देखने सुनने को मिलता है। हमने तो भगवान के आगे दो दो हाथ उठा के दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, कहां गई वो हमारी दृढ़ता, क्यों हमारी दृढ़ता साधारणता में बदल जाती, कई बार क्यों हम चाहते वैसा नहीं कर पाते। उसके बाबा ने 4 कारण बताए, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग। इन पावन का इन चारों शब्द में पर शब्द आता है ना, जब इनमें बुद्धि जाती है तो इनसे आत्मा का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। इसलिए पावन का इन चारों परों को कट कर दो और एक पर लगा के रखो, कौन सा, पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बाप समान बने, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं, है? ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना हमारे मन में सर्व के प्रति निरंतर रहनी चाहिए, परोपकार की भावना रहनी चाहिए, तो ऐसी आत्मा पुरुषार्थ में निरंतर उड़ती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। और इसीलिए बावन का दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, दृढ़ता ही सफलता का आधार बनती है। तो अपनी दृढ़ता को कभी कम नहीं होने दें। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव कि कैसे दृढ़ता सफलता का आधार बनती है। तो एक भाई थे, ये उस समय की बात है जब अपना पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं निकला था, तो सभी भाई बहने सेंटरों पर आकर अव्यक्त बाप दादा को देखते थे, मुरली सुनते थे। तो एक भाई थे, वो एयरपोर्ट पर सर्विस करते थे, तो उन्होंने उस दिन बाबा को आना था, अव्यक्त बाप दादा को, तो उन्होंने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, भैया आज मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली, एयरपोर्ट पर सर्विस करते थे। तो लेकिन उनकी दृढ़ता फिर भी कम नहीं हो रही थी, वो बाबा को बार बार यही याद कर कह रहे थे कि बाबा कुछ भी करो लेकिन आज आपकी मुरली सुनने के लिए मुझे सेंटर पर जाना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प करके और बड़ी लगन से बाबा को बार बार याद कर कह रहे थे। तो उनको छुट्टी मिलने का देखो एक ही तरीका है, क्या, कि मौसम खराब हो जाए, प्लेनों का उड़ना बंद हो जाए, एयरपोर्ट बंद हो, तो उसको छुट्टी मिल सकती है। अब यह तो इतना सहज काम नहीं है, लेकिन वो बार बार अपने एक निश्चय बुद्धि बनकर दृढ़ता के साथ बाबा को याद कर यही कह रहा कि बाबा कुछ भी करो लेकिन आज आपकी मुरली सुनने के लिए मुझे सेंटर पर जाना ही है। तो देखो कैसे उसकी दृढ़ता सफलता का आधार बनती है। तो जैसे जैसे श्याम होने को आता है तो श्याम के 5 बजे के करीब वो देखता है तो धीरे धीरे मौसम खराब होता चला जाता है और मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है और प्लेनों का उड़ना बंद होता है, एयरपोर्ट बंद होता है, उसको छुट्टी मिल जाती है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है दृढ़ता के अंदर। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों न आए, लेकिन हम अपने मन में कभी भी कमजोर नेगेटिव विचारों को ना लाएं और एक दृढ़ संकल्प करके निश्चय बुद्धि बनकर आगे कदम बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से जो आप सोचेंगे फिर वही होगा और आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए मुझे एक बाप दादा का संदेश याद आता है। बहन जी को पता होगा, आप में से जो भी पुराने हैं उनको पता होगा कि एक बार जब मैं समझता हूँ 25-30 साल हो गए होंगे इस बात को, जब दादी प्रकाशमणि जी अच्छी स्थिति में थी तो दादी के मन में विचार आया 3-4 महीने के लिए बहनों को एक दूसरे सेंटरों पर परिवर्तन करना है, ट्रांसफर करना है। तो कई बहनों को बताई ये बात दादी जी ने, तो किसी ने क्या अलग अलग जवाब मिले सबके। तो वो सब बातें संदेशी बहन को दादी ने बताई और कहा कि इन सब बातों को बाबा को जाके बताना और उसके रिटर्न में जो बाबा संदेश दे वो लेकर आना। तो संदेशी बहन गई, बाबा से मिली, बाबा को सारे समाचार बताया और बाबा ने उसके रिटर्न में जो संदेश दिया था उसका एक लाइन में, वैसे संदेश बड़ा होता है, 1-1.5 पेज का होता है, लेकिन शिक्षा सावधान वाली बात 1-2 लाइन में ही होती है, तो इशारा जो बाबा देता है, तो उसका सार यही था कि परिवर्तन ही प्रगति का साधन है, परिवर्तन ही प्रगति का, उन्नति का साधन है। और वो संदेश फिर सभी सेंटरों पर भेजा गया और उसके बाद 4 महीने के लिए शायद बहनों का ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर के करीब 20-25 दिन बाद दादी जी के पास कई टीचर्स बहनों के अच्छे अच्छे अनुभवों के पत्र आने लगे और उनमें से जो सबसे अच्छे अनुभवों के पत्र थे वो मधुबन में रात्रि क्लास में एक दिन पढ़ के सुनाए गए। तो उसमें यही लिखा था कि दादी जी आपने ट्रांसफर करके बहुत अच्छा किया हमारे लिए, जैसे कि उन्नति का द्वार खोल दिया। किसी ने लिखा कि दादी जी अभी हमारा पुरुषार्थ तो बहुत तीव्र गति का हो गया है। किसी ने लिखा कि दादी जी अभी आपको आप उस सेंटर पर वापस नहीं भेजना, इस सेंटर पर रहने देना। तो माना जैसे बाबा ने कहा परिवर्तन ही प्रगति का साधन है, ऐसे वो परिवर्तन अनेक आत्माओं के लिए उन्नति का प्रगति का साधन बन गया। तो बाबा जब भी जिस बात में हमें परिवर्तन का कुछ करने का इशारा दे, यदि हम तुरंत वैसा करके चलते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता समाई हुई है। तो अभी आप सब देख रहे हैं मम्मा का मास चल रहा है, तो मम्मा की ये बहुत ही शिक्षा पक्की थी कि बाबा ने कभी भी कुछ मम्मा को कहा मम्मा ये काम करोगी, मम्मा ऐसा करना है, ये बनाना है, जी बाबा, हाँ जी बाबा, कभी भी मम्मा ने ना नहीं किया बाबा की बात को। और वो वैसे ही होता था, सदा मम्मा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलती थी, क्योंकि ये निश्चित है कि बाबा जो कुछ हमें श्रीमत इशारा देते हैं, करने को कहते हैं, अगर हम तुरंत उसी समय करके चलते हैं तो उसमें वैसा बनने करने की शक्ति भी बाबा साथ साथ दे देते हैं और उसमें सहज सफलता की अनुभूति होती है। इसलिए जब भी रोजाना की मुरली में बाबा जो कुछ हमें कहे, करने को होमवर्क दे, हम तुरंत वैसा करके चलें बने, तो हमारे कदम कदम पर सफलता मिलती रहेगी, प्रगति होती रहेगी। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए दो बातों को अंडरलाइन करके चले, पहला फुल स्टॉप, दूसरा फुल स्टॉक। दोनों इंग्लिश शब्द हैं। फुल स्टॉप माना हम जब चाहें जहां चाहें बीती बातों को बिंदी लगा दें, फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि बीती बातों के चिंतन में भी बहुत आत्माओं का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। इसलिए बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना बहुत बहुत जरूरी है। किस बात की आवश्यकता है, उसके लिए क्या करना होगा? बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाने के लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, और कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी, उसके लिए क्या करें? कंट्रोलिंग पावर के लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। और जहां विचार महान होंगे, तो विचार महान कैसे बनेंगे? विचार महान बनेंगे स्वमान के अभ्यास से, ज्ञान के मनन चिंतन से, विचार सागर मंथन से। तो जो कुछ बाबा रोजाना की मुरलियों में कहता है उस पर मनन चिंतन करें, विचार सागर मंथन करके चलें, और रोजाना की दिनचर्या में कोई न कोई समान का अभ्यास करके चलें, तो उससे भी हमारे विचार महान बनेंगे। और जहां विचार महान है तो उन्हें हम सहज ही कंट्रोल कर सकेंगे, और जहां कंट्रोलिंग पावर है तो बीती को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। दूसरा फुल स्टॉक, हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भी आगे आने वाले समय भी आप सब देख रहे हैं आज के इस करुणा काल में कितनी आत्माएं भयभीत हैं, दुखी अशांत हैं, जो भी शरीर छोड़कर जा रहे हैं काले मृत्यु में वो भटक रही हैं। तो ऐसी अनेक दुखी अशांत भटकती तड़पती आत्माएं हम सभी के पास आएंगी, हमें सुख दो, शांति दो, नजर से निहाल करो। आप कहते थे हमको भगवान मिलाए, थोड़ा हमारे को भी तो उसकी अनुभूति कराओ। कौन उनकी इच्छा पूरी कर सकेगा जिन्होंने अपने स्टॉक में अपने आप सर्व खजानों से अपने आप को फुल किया है। कैसे भरपूर होंगे हम सर्व खजानों से, तो जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं, तन मन धन समय श्वास संकल्प ज्ञान गुण शक्तियां, ये सब खजाने हैं ना, तो जितना इन खजानों को हम दूसरों को दान देंगे, सेवा में लगाएंगे, सफल करेंगे, यूज करेंगे, उतना ये खजाने हमारे बढ़ते जाएंगे, स्टॉक फुल हो जाएगा। देखो दुनिया भी खजाने को हम यूज करेंगे तो वो कम होता जाता है, और बाबा ने ऐसे खजाने दिए जितना हम उन्हें यूज करेंगे, दूसरों को दान देंगे, खर्च करेंगे, सेवा में लगाएंगे, उतना ही और बढ़ते जाएंगे, हमारा स्टॉक फुल हो जाएगा। तो और फिर जो भी आत्मा जिस भावना को इच्छा को लेकर हमारे पास आएगी, हम उसको वो दे सकेंगे, उसकी इच्छा पूरी कर सकेंगे। तो इस पर भी एक छोटा सा अनुभव। एक बुढ़िया माता थी, बाबा के ज्ञान में चलती थी, उसके पास बहुत धन था, अथा धन, लेकिन बाबा की भंडारी में वो थोड़ा सा ही करती थी। तो और भाई बहन उसको बोलते थे कि माताजी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी, इससे तो अच्छा आप क्यों नहीं बाबा की भंडारी में करके अपना भाग्य बना लो, भविष्य में उतना मिल जाएगा। लेकिन वो फिर भी किसी का नहीं सुनती थी, थोड़ा सा ही करती थी। तो एक दिन क्या देखा उसने कि रात को वो नींद में स्वप्न देखती है, तो स्वप्न में क्या देखती है कि वो स्वर्ग में पहुंच गई है। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल बाग बगीचे देखकर ही बुढ़िया के दिल खुश होगी, कितना अच्छा स्वर्ग है। तो और लोग सब स्वर्ग में अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था, इससे उसने पूछा भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ ताकि मैं भी देखूं आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग में। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा कि भाई जाओ ये माता जी को इनके घर तक छोड़कर आओ। तो वहां तो बड़े बड़े महल थे, और जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे चलता जाता धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे। तो बुढ़िया सोचने लगी ये कहां लेके जा रहा है, यहां तो और ही छोटे छोटे महल आते जा रहे। और लास्ट में जाके एक छोटी सी कुटरिया माता की बनी हुई थी, तो कहा कि माता जी ये आपका महल है। माता जी देखकर बड़ी परेशान कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया है। तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि माता जी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए, समझे, क्योंकि वो करती ही थोड़ा सा थी। तो भगवान तो दाता है, किसका लेकर क्या करेगा, आज जो भी हम उसके यज्ञ में सफल कर लेंगे उतना हमें भविष्य में मिल जाएगा। तो ये सुनकर बुढ़िया की आंख खुली, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी, और देखो हमारा तो है ही क्या, आज जो भी कुछ हम सबके पास है उस प्यारे बाबा दाता की ही देन है, और उसी का दिया हुआ हम उसी की सेवाओं में लगाकर फ्री में ही अपना भाग्य बना रहे। तो आप सब सोच लेना कि आपको स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए, इसका निर्णय आप खुद करना, और बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। और इस तरह से हम सर्व खजानों को सफल करके चलेंगे तो हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल हो जाएगा, और पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम, ये भी एक मम्मा का स्लोगन पक्का था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। जो मेरे सामने समय है वही मेरे लिए अंतिम घड़ी है, क्योंकि समय का तो कोई भरोसा नहीं, और हम सब देख ही रहे हैं, आज व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और अचानक एक्सीडेंट हुआ, बस चली गई आत्मा, कहीं भूकंप आया, कितनी आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती हैं। और कईयों को एडमिट किया, थोड़ा ही कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और कल मैसेज मिला शरीर छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेज होते रहते हैं, हार्ट अटैक हुआ अचानक शरीर छोड़ देता है, तो अचानक ही सब कुछ होना है, बाबा ने तो बता ही दिया है। तो अचानक क्रिएट होने वाली परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए हमें आवश्यकता है सदैव एवर रेडी रहने की। तो एवर रेडी कब रहेंगे, जब हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलेंगे। और बाबा ने बता ही दिया है बच्चे कभी भी किसी का नंबर लग सकता है, बुलावा आ सकता है, इसलिए सदैव एवर रेडी रहो, तैयार रहो। तो क्योंकि समय का तो कोई भरोसा नहीं है ना, और अंत का समय तो आकर पहुंच ही गया है, विनाश हो ही रहा है, आप हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए बाबा के बच्चे भी कितना शरीर छोड़कर जा रहे हैं, तो कभी भी किसी का नंबर लग सकता है। इसलिए स्थिति श्रेष्ठ होगी, बाबा के साथ बुद्धि योग अच्छा होगा। तो देखो शरीर छोड़कर तो सबको जाना ही है, लेकिन भगवान के साथ बुद्धि योग अच्छा होगा, उसकी याद में शरीर छोड़ेगा छूटेगा तो क्या गायन है, अंत मते सो गति, तो सदगति होगी, ऊंच पद की प्राप्ति मिलेगी है, आत्मा दुख नहीं पाएगी अगर बाबा की याद है तो, उसमें सेकंड में शरीर छोड़कर उड़ जाएगी। लेकिन अंत में बाबा की याद किसको आएगी, जिन्होंने सारा जीवन याद में रहने का पुरुषार्थ किया हुआ होगा उनको ही अंत में बाबा की याद आएगी। नहीं तो जो सारा जीवन बुद्धि में जो बातें व्यक्ति वस्तु है पदार्थ रहे हैं फिर वही अंत में याद आएंगे। इसलिए बहुत काल का अभ्यास ही में हम लग जाएं, जिन्होंने सारा जीवन जो कुछ जैसा पुरुषार्थ रहा वही अंत में काम आएगा। तो इस पर भी एक छोटा सा अनुभव, एक गृहस्थी व्यक्ति था, उसके पास वो घर ग्रस्त की समस्याओं से बहुत तंग आ चुका था, परेशान हो गया था, और परेशान होकर वो एक सन्यासी के पास गया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत घर ग्रस्त की समस्याओं से दुखी परेशान हो गया हूं, इन सब से मुक्त होना चाहता हूं, कोई विधि बताओ। बोले अच्छा, बोले हाँ, तो बोला अपना हाथ दिखाओ। तो हाथ देखकर सन्यासी कहता है, भाई आपके साथ तो बड़ी खराब घटना होने वाली है। बोले क्या होने वाला है महाराज? नहीं नहीं, बोले बताने जैसा नहीं है। नहीं नहीं जरूर बताओ क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद फिर हाथ देख के कहता है, भाई आपके साथ तो बड़ा अपशगुन होने वाला है। बोले क्या होने वाला है महाराज? नहीं नहीं बोले बताने जैसा नहीं। तो जितना वो ना करे उतना ही उसके मन में और पूछने के लिए जिज्ञासा बढ़ती जाए, नहीं नहीं जरूर बताओ ऐसा क्या होने वाला है। तो जब वो बहुत पूछने के लिए लालायित आतुर हो गया, तब वो सन्यासी कहता है, देखो आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आज से 21 दिन बाद दिन के 1 बजे आप शरीर छोड़ देंगे, ये फाइनल है, ये होना ही है, निश्चित है। ऐसे कहके कि वो बात उसकी बुद्धि में फिट बिठा दी। अब उसकी बुद्धि चलने लगी कि आज से मैं 21 दिन बाद दिन के 1 बजे शरीर छोड़ दूंगा, तो मुझे क्या करना है। तो उसने अपने नाम जो भी मकान दुकान जब भी ज्यादा थे सब बच्चों के नाम कर दिया, और जिसको भी कुछ लेना देना बकाया था सबको चुकतू कर दिया, भी यहीं चुकतू करके चलो, कुछ रह गया किसी का तो भविष्य में चुकतू करना पड़ेगा, इसलिए यहीं से हिसाब किताब चुकतू करके चलो सबसे। और अपने मित्र संबंधियों को सबको मैसेज भेज दिया, फलानी डेट को दिन में 1 बजे मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, जिनको मिलना हो आ जाना। तो लोग जब 1-2 दिन बाकी रहे तो वो आने लगे मित्र संबंधी, वो दिन भी आ गया जिस दिन शरीर छोड़ने का समय था। तो जब 1-2 घंटे बाकी रहे तो कहा, भाई सब भगवान को याद करो, उसको बीच में बिठा लिया, भगवान की याद में शरीर छूटेगा तो सदगति होगी। तो बड़ी लगन से सब भभगवान को याद कर रहे हैं। जब 1 बज गया तो भगवान को छोड़ के उसकी तरफ देखने लगते, हाँ देखो कैसे शरीर छोड़ता है। तो 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गए, कुछ नहीं हुआ। तो सब बड़ा गुस्सा करने लगे कि सन्यासी ने क्यों झूठ बोला है, क्यों धोखा दिया है, चलो हम चल के बताते हैं उसे। तो जोर जोर से उल्टा सीधा बोलते सन्यासी के पास पहुंचे कि आपने क्यों धोखा दिया है, क्यों झूठ बोला है। तो सन्यासी कहता, आप सब शांत हो जाओ तो मैं बताऊंगा। तो सब शांत हो गए। तो सन्यासी कहता है, देखो ये व्यक्ति मेरे पास आया और इसने मेरे को कहा कि मैं महाराज मैं घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत परेशान हूं, मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूं, तो कोई विधि बताओ। तो मैंने विधि बताई, अब आप इससे पूछ लीजिए कि ये सबसे मुक्त हुआ है या नहीं, बोलो भाई सबसे मुक्त हुए या नहीं। तो वो सन्यासी हो व्यक्ति कहता है कि हाँ महाराज मैं सबसे मुक्त हो गया हूं और भगवान के पास जाने के लिए तैयार हूं। तो वो कब सबसे मुक्त हुआ, जब उसके लिए अंत का समय फिक्स कर दिया गया कि आपके लिए फलानी डेट का 1 बजे का समय ही अंतिम घड़ी है। तो उसकी बुद्धि सब तरफ से डिटैच न्यारी होती चली गई। अंत में लास्ट पॉइंट मैं बस 2 मिनट में पूरा करता हूं क्योंकि भाई जी को फिर कहीं जाना है। तो लास्ट पॉइंट के एक स्लोगन आप सबने देखा होगा, सेंटरों पर बहुत जगह लिखा हुआ होता है कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो हमको बाबा ने एक जिम्मेवारी दी है कि हम सिर्फ उसे याद करें, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। मेरा तो ये अनुभव है। इस पर एक अनुभव। तो वो अनुभव यही है कि एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, दो दिन की भट्ठी थी और तीसरे दिन एक एक दिन की तीन जगह उन्हीं के कनेक्शन के अंदर तीन सेंटरों पर भट्ठी थी। अब एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर क्लास शुरू हो जाते थे, तो तीन दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था। काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। तो चौथे दिन मॉर्निंग क्लास कराने के लिए वहां की बहन जी ने एक चौथे सेंटर पर भेजा। तो वहां जाते ही वहां की बहन जी ने कहा, चौथे सेंटर की बहन जी ने, कि भाई जी एक क्लास करा के और नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। तो मैंने बहन जी की बात तो सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, क्योंकि दिन में तीन दिन से रेस्ट नहीं मिला था और बहन जी ने कहा है कि क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। तो ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया, बस भगवान जी के लिए तो एक सेकेंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया और बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया। तो बहन जी फिर से कहती है कि अच्छा भाई जी, मेरे को ऐसा विचार आया, कभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह 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 वाह, इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे, एक भगवान मुझे देख रहा है तो मेरे लिए क्या सोचता होगा। इसलिए ये स्मृति इमर्ज रूप में रहेगी, एक भगवान मुझे देख रहा है तो मेरे लिए क्या सोचता होगा, तो अलर्टनेस रहेगी, तीव्रता बनी रहेगी पुरुषार्थ में। और एक लास्ट पॉइंट, और एक पॉइंट याद आई कि अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक समान इमर्ज कर लो, ऐसा समान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, और उसका स्वरूप बनकर सारे दिन में उस नशे में रहो, तो समान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते हैं, और जहां विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा। समान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। एक कैसी भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। एक बीमारी शारीरिक कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तो एक अनुभव मुझे और याद आया, एक बहन जी को, एक भाई को, एक सेंटर के मुख्य भाई को कोविड हो गया था। सनी सहयोगी था उसकी, युगल ज्ञान में चलती थी, तो मरने जैसी हालत में पहुंच गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और उधर वो बहन जी पावरफुल योग करने लगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रही हूं, बाबा इस आत्मा को आपने ठीक करना है, ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन देती। और उधर हॉस्पिटल में उस भाई को यह अनुभव होता, बहन जी जैसे आ गई है और मेरे को कह रही है कि शिव बाबा को याद करो ठीक हो जाओगे, शिव बाबा को याद करो ठीक हो जाओगे। ऐसे वो एक एक दो दो घंटा रोजाना योग करती और इस हिम्मत के कारण, ऐसी पावरफुल वाइब्रेशन से वो एक सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गया। उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसके बाद उसने सेंटर पर रेगुलर मुरली सुनना शुरू कर दिया। तो इस तरह से समान के पावरफुल वाइब्रेशंस के द्वारा असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें, तो आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और एक तीव्र पुरुषार्थ करते निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहें और बाप समान बन जाएं, तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति, ओम शांति।